हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरिफ की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। भले ही आयु को अभी भी उसके इमोशंस मजाक लगते थे, लेकिन वो उसके साथ एक ही घर में रहती थी और उन दोनों का रिश्ता भी थोड़ा क्लोज हो गया था। आरिफ को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो आयु को हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए मना ही लेगा। लेकिन इस बीच अचानक उनके लॉयर मिस्टर खन्ना का कॉल आया और उन्होंने आरव को आयु के साथ कोर्ट आने के लिए कहा। जिस कुंडे ने आरव और आयु की जबरदस्ती शादी करवाई थी वो पकड़ा गया था। उसने आरव और आयु की तरह और भी ऐसे लोगों की शादी करवाई थी जो कपल नहीं थे और साथ नहीं रहना चाहते थे। ये एक अच्छा मौका था जब आरव को आयु से डिवोर्स लेने के लिए 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता और उनकी शादी लीगली रद्द हो जाती। मिस्टर खन्ना के कॉल के बाद आरव परेशान हो गया था। ऊपर से आयु भी जानती थी कि आरव के पास लॉयर का कॉल आया है। मुझे कुछ भी करके कल आयु को कोर्ट जाने से रोकना ही होगा। मैं आयु को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता, आरव ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। आरव काफी देर से बाहर था। वो खाने के लिए अंतर नहीं आया तो उसे बुलाने के लिए आयु ही बाहर चली आई थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि वो आरव के सामने से चलकर आ रही है। फिर भी आरव का ध्यान उसकी तरफ एक बार भी नहीं गया। आरव के चेहरे पर परेशानी के भाव भी दिखाई दे रहे थे। आयु ने उसके पास जाकर पूछा, कहाँ खोए हो तुम? दादी कब से खाने के लिए आवाज़ लगा रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? और ऊपर से मैं तुम्हारे सामने से आ रही हूँ, फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है। किसके बारे में सोच रहे हो? बोलते हुए आयु ने आंखें छोटी करके आरव को घूर कर देखा। आरव आयु को अचानक अपने सामने देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद के चेहरे के भावों को कंट्रोल में रखा। उसने नामे सिर हिलाकर सामान्य अंदाज में कहा, किसी के बारे में नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन आयु ने बोलना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। आयु ने चेक किया तो मिस्टर खन्ना का कॉल आ रहा था। जैसे ही आरव ने देखा कि उसके मना करने के बावजूद मिस्टर खन्ना आयु को कॉल कर रहे हैं, उसने आयु के कॉल रिसीव करने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था। आयु ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा, ये मिस्टर खन्ना मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? जहां तक मुझे याद है, इनका ही कॉल रिसीव करने के लिए तुम बाहर आए थे। हाँ, इन्होंने मुझे कुछ पूछने के लिए कॉल किया था। मेरी बात हो गई है, छोड़ो ना, अंदर चलते हैं, मुझे भूख लगी है और दादी भी हमारा वेट कर रही हैं। आरव कोई ना कोई बहाना बनाकर आयु को वहां से ले जाना चाहता था ताकि वो मिस्टर खन्ना का कॉल रिसीव ना करे। ठीक है, तुम जाओ, मैं मिस्टर खन्ना से बात करके आती हूँ, हो सकता है उन्हें मुझसे कुछ काम हो, आयु ने जवाब दिया। आरव बार बार रोककर आयु के मन में शक पैदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर खन्ना का कॉल कट गया था। आयु ने उन्हें दोबारा कॉल लगाया और वो उनसे बात करने के लिए जा ही रही थी कि आरव जानबूझकर तेजी से उसके पास से निकला, जिससे धक्का लगने से आयु का फोन नीचे गिर गया था। मौका पाकर आरव ने अपने पैर से उसे पूल में फेंक दिया था। आरव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, तो वहीं आयु गुस्से में उसे घूर रही थी। वो तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, आरव ये क्या किया तुमने? तुम अच्छे से जानते हो मैं अभी एक नया फोन लेना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। सॉरी, गलती से हुआ, आरव ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहा। आयु ने उसके कंधे पर मारा और बोली, ओ रियली, गलती से हुआ? मैंने देखा था तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। ऊपर से मेरा फोन पूल में नहीं, नीचे गिरा था, तुमने उसे पैर से पूल में गिराया था। आरव ने जब अपने पैर से आयु के मोबाइल को पूल में फेंका था, तब आयु ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अच्छा ठीक है ना, एक मोबाइल ही तो है, उसके लिए इतना चिल्ला क्यों रही हो? कल एक नया ला दूंगा। तुम कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, आरव बेपरवाही से बोला और उसने आयु का फोन पूल से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे दूर रहा करो। कई बार ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो, आयु ने नाराजगी जताते हुए कहा। उसने आरव के हाथ से अपना मोबाइल ले लिया था, लेकिन वो पूरी तरह खराब हो चुका था। आरव से नाराज होकर आयु अंदर जा रही थी, जबकि आरव उसे मनाते हुए पीछे पीछे आ रहा था। वो आरव की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। आरव आयु के पीछे जाते हुए तेज आवाज में बोला, अरे रुको तो मिसेस खुराना, अब क्या एक मोबाइल के लिए तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी? मैंने बोल तो दिया कल नया ला दूंगा, वैसे भी वो काफी पुराना हो चुका होगा। आई प्रॉमिस, कल मैं तुम्हें एक एडवांस न्यूली लॉन्च सेल फोन लाकर दूंगा। आयु ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेयर पर जाकर बैठ गई। जिस तरह से वे दोनों रिएक्ट कर रहे थे, उसे कोई भी समझ सकता था कि जरूर उनके बीच फिर से बहस हुई है। अब क्या किया तुमने इसके साथ? देखो आरव, ये तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, गौरवी जी ने आरव को डांटते हुए कहा। आयु ने अपना मोबाइल गौरवी जी के सामने रखा और लाचारी से कहा, देखिए ना दादी, आरव ने जानबूझकर मुझे बाहर धक्का दिया। मैं तो नीचे नहीं गिरी, लेकिन मेरा फोन नीचे गिर गया था और इसने जानबूझकर मेरे मोबाइल को पूल में पैर से फेंक दिया। मैंने उसे ऐसा करते हुए खुद देखा था। पता नहीं आखिर इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। आयु के नाराज होने के बाद भी आरफ के चेहरे पर कुछ हद तक राहत के भाव थे। उसने मन ही मन कहा, थैंक गॉड, आयु ने सिर्फ मुझे मोबाइल फेंकते और उसे धक्का देते हुए ही नोटिस किया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसे मिस्टर खन्ना से बात करने से रोकने के लिए मैंने ये सब किया था। आयु से पूरी बात जानने के बाद गौरवी जी आरफ की तरफ घूर कर देख रही थी। उन्होंने आरफ से पूछा, कोई सफाई है तुम्हारे पास इस बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया? आरफ ने मासूम बनते हुए कहा, नो दादी, मैंने इसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया और पूल में भी मैंने इसका फोन जानबूझकर नहीं फेंका था। गलती से इससे टकराने की वजह से मेरा भी बैलेंस बिगड़ गया था, पर इसे तो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना होता है। आप मुझे ही डांटती रहती हैं, इसे भी कुछ समझाइए। दूसरी बात, अगर मुझसे गलती हुई भी है तो मैं उसे सही करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कह तो दिया कि मैं कल इसे नया सेल फोन ला दूंगा। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयु ने मुंह बनाकर कहा। अजीब जिद्दी लड़की हो, तुम्हें जो करना है करो, क्या मुझे कोई खाना खाने को देगा? आरव ने रूखे तरीके से जवाब दिया और अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। उन दोनों की बहस के बीच गौरवी जी ने उन्हें अकेला छोड़ना ही सही समझा, वैसे भी उनका खाना हो गया था। गौरवी जी अपनी चेयर से प्लेट उठाते हुए बोली, मेरा खाना हो गया है, सॉरी, पर मैंने तुम दोनों का इंतजार नहीं किया, मुझे कुछ काम था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम दोनों खाओ, मैं चलती हूँ। गौरवी जी ऊपर अपने रूम में चली गई, जबकि आयु और आरव दोनों खाना खा रहे थे। आरव की गलती करने के बाद भी एटीट्यूड दिखाने पर आयु गुस्सा थी, तो वहीं आरव को आयु पर इस वजह से गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आरव से नया फोन लेने से साफ मना कर दिया था।
आरव आयु को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। वो मन ही मन बोला, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, यहाँ मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ और ये है कि अलग ही एटीट्यूड में है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार मेरे प्यार के आड़े क्यों आ जाती है? यहाँ मैं अपना सब कुछ इस पर लुटाने को तैयार बैठा हूँ और ये है कि अपनी जिद पर अड़ी है। अपने ख्यालों में खोए हुए आरव ने अनजाने में सलाद से मिर्ची उठाकर खा ली थी और उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। आरव जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जबकि आयु उसे देखकर हंस रही थी। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, आयु ने मुस्कुराकर कहा। आरव ने आयु को देखकर मुंह बनाया। आयु ने टाइम देखा तो काफी देर हो रही थी। वो आरव से बोली, तुम्हारा हो गया है तो घर चलें? आरव ने ना में सिर हिलाकर कहा, आज रात तुम यही रुक जाओ, मैं अकेले घर चला जाता हूँ। वैसे भी माहिला यहाँ नहीं है और दादी से तुम्हारी कुछ पर्सनल बातें भी रह गई होंगी, तो वे भी कंप्लीट कर लेना। आयु को आरव के अजीब बर्ताव का मतलब नहीं समझ आया, पर वो इतना जरूर समझ रही थी कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही चलूंगी, समझे तुम? मैं घर का पूरा किराया दे रही हूँ, तो तुम मुझे इस तरह निकाल नहीं सकते, खड़ूस खुराना, आयु ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मजबूरन आरव को हामी भरनी पड़ी, लेकिन मन ही मन उसे ये डर सता रहा था कि कहीं मिस्टर खंडा उसके घर ना पहुंच जाए। थोड़ी ही देर में आरव और आयु घर पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते आरव यही सोच रहा था कि कल पूरे दिन आयु को कैसे बिजी रखा जाए। अगले दिन आरव सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गया। वो बाहर आया तो उसने देखा कि आयु भी रेडी होकर किचन की तरफ जा रही थी। वो जल्दी से उसके पास गया। आरव ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आयु, अच्छा हुआ तुम जल्दी ही रेडी हो गई, चलो हम ऑफिस चलते हैं, वहाँ कियान शूट के लिए वेट कर रहा है। लेकिन कल शाम को तो कियान ने मुझे कहा था कि बाकी का शूट दो दिन बाद होगा और वैसे भी ऑफिस जाने में अभी टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाना है, खाकर चलते हैं ना, आयु ने जवाब दिया। मैंने शूट का लोकेशन एक होटल में रखा है, वहाँ तुम्हें जो खाना है खा लेना, लोकेशन थोड़ी दूर है इसलिए जाने में टाइम लगेगा, मैंने सोच लिया है कि बचा हुआ शूट आज ही खत्म करेंगे, आरव ने काफी सधे हुए अंदाज में कहा ताकि आयु को उस पर शक ना हो। उसने सोच लिया था कि वो पूरे दिन आयु को डिजायर्स और अपने घर से कहीं दूर बिजी रखेगा, ना तो उसे किसी का कॉल रिसीव करने का टाइम मिलेगा और ना ही गलती से भी मिस्टर खन्ना उसके ऑफिस या घर आ सकते हैं। कल रात से काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, ठीक है मुझे पता है तुम प्रोफेशनल हो, पर उठते ही इतनी जल्दबाजी कभी नहीं दिखाते हो, ड्रिंक तो नहीं की ना तुमने, आयु ने आरव को घूरते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया और सख्त अंदाज में बोला, क्या मैं पूरे दिन पीकर घूमता हूँ? जब देखो यही सवाल करती रहती हो, हमें फिनिशिंग का भी काम जल्दी से कंप्लीट करना होगा, इसके लिए जरूरी है आज ही किसी भी हालत में ये शूट कंप्लीट करना होगा, तो तुम शूट के अलावा कहीं नहीं जाओगी और ना ही किसी से बात करके टाइम वेस्ट करोगी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये अपने खरूस खुराना वाले अवतार में फिर से आ गया, पता नहीं आज डिजायर्स के एम्प्लॉयज का क्या होगा। आरव आयु को बिना कुछ खाए पिए ही जल्दी में होटल लेकर गया, वहाँ शूट की तैयारियां चल रही थीं। वहाँ पहुँचते ही आरव ने आयु को रेडी होने भेज दिया। आरव ने युवानी को अपने पास बुलाया और कहा, युवानी, आयु ने कुछ नहीं खाया है तो उसके खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी आज तुम्हारी है। मैं नहीं चाहता काम के चक्कर में वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करे। ऐसे समझ लो कि आज के लिए तुम मेरी नहीं उसकी असिस्टेंट हो। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि वो किसी से भी बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करे। ओके सर, आपको भी कुछ चाहिए तो प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा। युवानी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। उधर शूट की तैयारी करते वक्त रियान और कियान आपस में बातें कर रहे थे। आरव सिर्फ आयु पर ही नहीं पूरी टीम पर सख्ती दिखा रहा था ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। रियान ने धीमी आवाज में कहा, आखिर एके को हो क्या गया है? शूट तो ऑफिस में होने वाला था, अचानक से लोकेशन चेंज कर दिया और सारा काम आज ही करने को दे दिया। तुम्हें नहीं पता कियान, इतनी सारी ड्रेसेस को यहाँ लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। आज मीशा भी नहीं आई। मुझे तो आयु का सोचकर अफसोस हो रहा है कि वो एक दिन में इतना शूट कैसे करेगी। कियान ने जवाब में कहा, आयु अब प्रोफेशनल की तरह बिहेव करती है, सो डोंट वरी, शूट तो कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ तो मुझे आरव के बिहेवियर में लग रही है। जिस तरह से वो डेडलाइन बोलकर सबसे जल्दी काम करवाने में लगा है, उतनी भी जल्दी नहीं है। समटाइम्स, ओ सॉरी, एवरी टाइम मुझे ये समझ नहीं आता कि एके आखिर चाहता क्या है। वे सभी आरव के अजीब बर्ताव पर हड़बड़ाए हुए थे। एक दो दिन पहले ही मीटिंग में आरव ने सबसे यही कहा था कि अब उनके पास शूट करने के लिए थोड़ा टाइम और है, और आज ही उसने सबको डेडलाइन का बोलकर काम पर लगा दिया था। वहीं आरव दूर खड़ा उन सबको देख रहा था। वो समझ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो मन ही मन काफी रिलैक्स था। आरव ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, थैंक गॉड मैं आयु को ऑफिस और घर से दूर ले आया। अब अगर खन्ना ऑफिस में भी कॉल करने की सोचेगा तो भी टेंशन की कोई बात नहीं होगी। सही कहा था दादी ने, मुझे सीरियस होकर आयु को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। बस आज का दिन जैसे तैसे बीत जाए, उसके बाद कैसे मैनेज करना है आई विल हैंडल एवरीथिंग। जैसा कि आरव ने सोचा था, सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा था। दोपहर को एक छोटा सा लंच ब्रेक रखा गया। आयु रेस्ट करने के लिए रूम में गई। इस बीच एक होटल स्टाफ उसके लिए पार्सल लेकर आया। आयु उसे देखकर खुश हो गई थी। उसने कल रात को अपने लिए नया मोबाइल ऑर्डर कर दिया था। थैंक गॉड ये बिल्कुल सही टाइम पर आया है। रेस्ट करने के बहाने मैं इसका सेटअप भी कर सकती हूँ। क्या पता किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आया हो। कल रात मिस्टर खन्ना का कॉल भी मिस हो गया। देखा जाए तो जब से मिस्टर खन्ना का कॉल आया था, मुझे आरव का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा है। जरूर कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है, आयु ने मोबाइल को ऑन करते हुए कहा। पहले उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी उसने नोटिस किया कि मिस्टर खन्ना के कॉल के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही आयु ने मोबाइल में सिम कार्ड डालकर उसे ऑन किया तो उसने देखा मिस्टर खन्ना के काफी सारे कॉल्स और मैसेज के नोटिफिकेशन आए हुए थे। जैसे जैसे आयु उन मैसेज को पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे और उसे अब सब समझ आ रहा था कि आरव ये सब क्यों कर रहा है।